following him.
I'm on now, is that right?
Yes, sir.
Is this working?
It's working.
Okay, you're sure. Okay. What have you told them about me so far?
I said, you're a man of God.
आपने
आपने इन सबको मेरे बारे में क्या कहा? मैंने ये कहा कि आप खुदा के एक बंदे हैं.
Wow, I'm so delighted to be here.
मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर.
I've probably spoken more through translator than any other way through the last 15 years.
पिछले 15 सालों से मैंने जो भी पैगाम दिए हैं वो तर्जमानों के वसीला से दिए हैं.
I'm quite sure I have the honor of being the oldest gentleman in the group tonight.
और मैं ये इज्जत मुआब बात समझता हूँ कि आप सबके पंडाल में मैं सबसे ज्यादा ऊपर में जहीर हूँ.
And I've been soul winning, discipling, preaching, pastoring, and missionary since my teen years.
और अपनी जवानी के ही आयाम से रूहों को जीतने में, मनादी करने में, शिगिर्दियत में शिगिर्द बनाने में, चर्च प्लांटिंग में, मिशनरी काम में मसरूर हूं.
This may be sort of the capstone, the highlight of my life to be here right now.
और मैं यहाँ तक कहूँगा कि ये क्या है जी, वो हाईलाइट यानी कि बड़ी चमक धमक वाली घड़ी है कि मैं आपके दरमियान यहाँ पर मौजूद हूँ.
The Apostle Paul at one point wrote that he had finished the course.
पौलुस रसूल ने एक दफा लिखा था कि मैंने अपनी रेस को, अपनी दौड़ को खत्म कर दिया.
I'm still running the race, but I can see the finish line not too far ahead.
मैं अभी तक अपनी दौड़ को दौड़ रहा हूँ लेकिन मैं उस खत्म होने वाली दौड़ की, उस रेस की क्या है जी, फिनिश लाइन को देख सकता हूँ.
I've been married for 52 years.
मैं पिछले 52 साल से शादीशुदा हूँ.
We have, my wife and I have two children and they're international. They were adopted.
मेरे और मेरी बीवी के हमारे दो बच्चे हैं जो हमने ले पालक लेकर पाले थे, जो कि अमेरिका से नहीं बल्कि इंटरनेशनली हैं.
We have six grandchildren.
मेरे छह क्या है जी, पोते हैं.
And when I had grandchildren, I realized I was growing up. You know, I'm well down the line.
जब मैंने देखा कि मेरे पोते पोतियां होने शुरू हो गए तो मुझे पता चल गया कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ.
But there's more. There's more. Last week I was at a birthday party for my great grandson.
और पिछले हफ्ते मैं अपने बड़े पोते की सालगिरह पर मौजूद था.
I'm an executive with an organization called First Love International.
मैं जो हूँ एग्जीक्यूटिव क्या हूँ जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फर्स्ट लव कहते हैं, जिसका मैं क्या हूँ जी, एग्जीक्यूटिव हूँ.
Over the last 50 years, I spent 20 years as a pastor of a normal church.
पिछले 20 साल से मैं एक आम चर्च में क्या है जी, आम तौर पर पासवानी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ.
Except that I treated those churches and those regions as mission fields, and I was really a missionary pastor.
और उन इलाकों में जब मैंने खिदमत को किया तो मैंने उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया हुआ था वो क्या था कि मैं यहाँ पर एक मिशनरी पासवान हूँ और मिशनरी नजरे हयात से मैंने वहाँ पर काम किया.
During the 1990s, I spent a decade training pastors at areas of spiritual revival.
1990 के लगभग मैंने बहुत ज्यादा अपना वक्त गुजारा रूहानी बेदारी के तल्लक से खिदमत को अंजाम देते हुए.
For the last 15 years I've been a missionary with First Love, as I mentioned.
और जैसे मैंने पहले कहा कि पिछले 15 सालों से मैं जो फर्स्ट लव है उसके साथ खिदमत कर रहा हूँ एक मिशनरी के तौर पर.
Spend most of that time in the Czech Republic, which is the most atheistic nation in the world.
और बहुत ज्यादा मेरा वक्त गुजरा है एक इलाका है जिसे क्या कहते हैं, चेक रिपब्लिक, जिसमें क्या है जी, एथियस्ट रहते हैं और एथियस्ट उनको कहते हैं जो खुदा के वजूद का इनकार करते हैं.
And the Lord gave us a wonderful harvest there.
लेकिन खुदा ने हमें वहां पर बड़ी जबरदस्त फसल की काश्त दी।
I don't put that harvest as done or past, it's still going on.
और मैं उस जो पैदावार को ये नहीं कहता कि वो माजी है, बल्कि वो क्या है जो मसलसल काटी जा रही है।
I'm still involved in the Czech Republic, was there 3 times this year.
और मैं पिछले इस साल से पिछली 3 दफा चेक रिपब्लिक में जा चुका हूँ खिदमत के तलक से।
So this year I've also ministered in South America, Europe and Asia.
और इस साल में साथ साथ मैंने साउथ अमेरिका और यूरोप में और अफ्रीका और इन सारी बातों को करने का मकसद यह है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ।
You know, you get my age and you've hung on this long, some people start thinking you're smart whether you are or not.
और जब आप बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं तो कुछ सोचते हैं कि आप बड़े ही ज़हीन हो, अकलमंद हो, चाहे आप अकलमंद हो या ना हो, आपकी एज को देखकर वो कहते हैं कि आप अकलमंद हो।
So my organization asked me to begin to be pastor and mentor and trainer of our other missionaries.
और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे कहा कि आप क्या करो जी, ट्रेनर बनो, लोगों को सिखाना शुरू करो, शागिर्दियत का काम शुरू करो। और मुझसे उन्होंने ये सारा चाहा कि इसे किया जाए।
My organization is not involved in this part of the world.
और मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान से में कहीं पर भी सरगर्मी अमल नहीं है।
But a decade ago, the Lord began to stir my heart to study this part of the world.
और 10 साल पहले खुदा ने मेरे दिल को क्या है जी, उस पर काम करना शुरू कर दिया कि मैं इस दुनिया के हिस्से पाकिस्तान में गौर व फिक्र और उसका मुताला करना शुरू करूँ। मैंने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया जो पाकिस्तान के जियोग्राफिया के तलक से और किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया कि इस कल्चर में किस तरह खुदा काम कर रहा है और यहाँ इर्द गिर्द के जो कल्चर है उनमें कैसे खुदा काम कर रहा है। खुदा बड़ी ही जबरदस्त क्या कर रहा है जी, सरगर्मियां कर रहा है यहाँ पर।
I'm stunned at the spiritual awakening of revival in nations like Iran right now.
मैं हैरान हूँ कि किस कदर ईरान में रूहानी बेदारी का भूचाल आया हुआ है।
2 years ago, God connected my wife and I with a children's ministry in this nation, not far from where we are right now.
2 साल पहले खुदा ने मुझे कनेक्ट किया कि किसी के साथ राबता हो पाकिस्तान में, जो यहाँ पाकिस्तान के इलाके में हैं और उनसे मेरा राबता हुआ जो यहाँ पर नज़दीक ही रहते हैं इस पंजाब के इलाके में।
And then you and I met, what, about 5 weeks ago was all.
और मैं और पादरी दानियल तकरीबन कोई 5 हफ्ते पहले हमारी मुलाकात हुई।
So on a Friday night, you and I talked for maybe, and your wife for about 3 hours before supper, after supper.
Yes. और जुमे की शाम इससे पहले कि उस कॉन्फ्रेंस में मैंने हफ्ते को कलाम सुनाना था, इन्होंने कहा कि आपके पास वक्त है, तो मैंने तकरीबन इनको 3 घंटे दिए और इनके साथ मेरी और कैरी की काफी गुफ्तगू हुई।
I've been trying to bring somebody from Pakistan to America, and with the current President Trump administration, that's not going to happen.
पिछले कुछ अरसे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को पाकिस्तान से अमेरिका में दौरे के लिए लेकर जाऊँ, लेकिन नामुमकिन सी बात है। जो मौजूदा क्या है जी, जो प्रेसिडेंट है उसके जो क्या है जी असूलों के मुताबिक नामुमकिन सी बात है।
So after 2 days of us getting acquainted, you said, "Hey, Dan, why don't you come our way?"
और जब हमारी गुफ्तगू हुई तो मैंने कहा कि क्यों ना आप पाकिस्तान में आओ, अगर आप आना चाहते हो तो हम वहाँ पर टीचिंग करेंगे, एक दूसरे के साथ रफाकत करेंगे। और
I'm about to teach, but I didn't come to teach, I came to learn.
मैं सिखाने वाला हूँ, लेकिन बताना चाहता हूँ मैं सिखाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए आया।
पचास
साल की बात है जो गुजर चुके हैं कि मैं किसी की दुआया कापी में था।
I don't know if I can explain this, but I'll try.
मुझे नहीं पता कि मैं इसे बयान कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा.
There's a state in the United States called Utah, and it's about 95% Mormon.
और अमेरिका में एक रियासत है, उसे क्या कहते हैं? यूटा कहते हैं. और यूटा में क्या है जी? 95% जो है वो है जी मोर्मन है.
And Nancy and I felt strongly called to go there to do evangelism by the church.
मेरी बीवी जिसका नाम नैन्सी है, हमें महसूस हुआ कि खुदा हमें बुला रहा है कि वहां पर जाकर खिदमत के काम को किया जाए.
And the Lord led us to a certain area.
और खुदावन ने हमारे लिए कुछ रास्ते खोले.
And somebody said, you know, there are a couple Christian believers in this area, and gave us their names.
और किसी ने बताया कि इस इलाके में कुछ मसीही हैं, और उनके उन्होंने हमें नाम दिए कि उनके साथ मुलाकात की जाए.
So I went and knocked on the door of an old lady named Mabel Kearns.
मैं गया और उस बूढ़ी औरत के घर पर दस्तक की, और उसका नाम क्या? What was the name?
Mabel.
उसका नाम Mabel था.
And she looked over the door and looked at me and asked who I am.
उसने दरवाजे को खोला और मुझसे पूछा कि आप कौन हो?
And I explained that I'm Dan Lupton.
मैंने उसे कहा कि मेरा नाम डैन लप्टन है, और मैं यकीन करता हूं कि खुदावत ने मुझे भेजा है इस इलाके में बशारत के काम करने के. और उसने कहा, तो आप हो मेरी दुआ का जवाब. जब उन्होंने पहले कहा कि मैं किसी की दुआया किताब में था, तो ये उनका कहने का मकसद था.
And she said, I'm in the middle of my morning prayer time.
उस बुजुर्गा ने कहा कि मैं दरमियानी सुबह में, इस सुबह में अपनी दुआ के दुरानिया हूँ.
She had a big, thick notebook.
उसके पास एक बड़ी मोटी नोटबुक थी.
And every morning she spent 2 hours praying through this notebook.
और हर सुबह वो 2 घंटे गुजारती थी उस नोटबुक के सफों पर दुआ के साथ.
One of her prayer requests was that God would send a missionary to where she was living to preach the gospel.
और उन दुआओं में से एक दुआ थी कि खुदावंद इस इलाके में मिशनरी को भेजे ताकि यहाँ पर खिदमत का काम हो.
And as I've grown older and feel myself slowing down just a little bit, I realize I'm praying more than I've ever prayed in my life.
जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, जो तजर्बे की बात है वो ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दुआ में वक्त गुजार रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ वैसे मेरी दुआ की जो नौयत है ज्यादा हो रही है.
Now 30 years ago I preached something like you, but now I speak sort of like I am right now.
30 साल पहले जैसे मैं अभी कलाम सुना रहा था, मैं वैसे बोलता था, चलता था, कहता था, लेकिन अब मैं ऐसे कलाम कर रहा हूँ.
And the Lord has called me to pray for this part of the world because this is where God's Spirit is working.
खुदा ने मुझे मेरे दिल में डाला है कि इस इलाका यानी कि पाकिस्तान के लिए दुआ करना शुरू करूं, क्योंकि खुदा का रूह पाकिस्तान में कसरत से काम कर रहा है.
So, and I don't know what more will come of it than that, but I'm here to listen to what God's Spirit is saying as I keep my eyes open. Meet people, this conference, the youth conference, other people will meet. I'm just saying, Lord, teach me what I'm supposed to do.
मुझे नहीं पता कि क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए कि इस कॉन्फ्रेंस में, आने वाली यूथ कॉन्फ्रेंस में मेरी यही दुआ है, खुदावंद मुझे बता तू क्या चाहता है, क्या कि मैं उसे पूरा करूँ.
Well, I think it's time for me to start teaching.
मेरा सोचना है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तालीम देना शुरू करूं.
And I don't know if this is good news or bad news, but as I was sitting here, my message grew longer.
मुझे नहीं पता कि ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है. जैसे मैं बैठा यहाँ पर सुन रहा था, मेरा जो पैगाम है वो ज्यादा ज्यादा लंबा होता गया.
Now as I stand up here, I think, no, I should have been cutting it, making it shorter.
और अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, मुझे चाहिए कि मैं अपने मैसेज को छोटा कर लूँ, लेकिन अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ जैसे खुदा की मर्जी होगी.
Let me say that I'm pleased to be with you, and I'm actually pleased to be any place tonight.
मैं आप सब से कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, आपके दरमियान हूँ. इससे मुझे बड़ी खुशी है.
2 years ago, I had stage 4 cancer.
2 साल पहले जो मुझे कैंसर था उसकी स्टेज नंबर 4 थी.
And I was dumb enough to think that wasn't too bad. I thought 4 out of 5 sounds serious. But actually, there's nothing more serious than stage 4 cancer.
मैंने अहमकाना तरीके से सोचना शुरू किया कि ये कोई बात नहीं है और चौथी स्टेज कैंसर को सीरियस नहीं लिया. लेकिन चौथी स्टेज का जो कैंसर है इससे ज्यादा कोई और बात सीरियस नहीं है.
It was from here to here, from here to here. It was...
और जो कैंसर का क्या कह सकते हैं अहाता उसने घेरा हुआ था वो गर्दन से लेकर क्या कह सकते हैं पेट और फिर तमाम बाजू जो बाएं और दाएं हैं.
It was in my bone marrow.
और उसके बाद फिर मेरी जो हड्डियों का जो कहते हैं जी जिसे कहते हैं ना ये कुत्ता उसमें था.
I received chemotherapy, chemo infusions.
मैंने कीमोथेरेपी का जो फ्यूजन लिया जो है जी वो टेक्निक है जो करते हैं.
That's why my head looks the way it does.
और इसीलिए मेरा जो सर है वो बड़ा चमकता हुआ नजर आ रहा है.
Actually, my hair wants to grow back, but I kind of like the memory of the miracle of my healing, so I keep it this way.
लेकिन मेरे बाल वापस आ रहे हैं लेकिन मैं क्या है जी इसे उस तरह ही फेरे रखता हूँ क्योंकि ये मुझे याद दिलाते हैं कि खुदा ने मेरे लिए कैसा मौजज़ा किया है.
A lot of people praying for me.
बहुत से लोग मेरे लिए दुआ कर रहे थे.
And my doctor was absolutely startled, shocked when after very brief chemo I was suddenly my cancer completely disappeared.
मेरा डॉक्टर हैरान हो गया जब उन्होंने टेस्ट किए और वो इस पास से परेशान था कि ये छोटे अरसे का जो कीमो का तजर्बा किया गया सारा कैंसर जा चुका था वो परेशान था.
And a lot of people prayed for me.
बहुत से लोग मेरे लिए दुआ कर रहे थे.
And it included a few atheists.
और उनमें से कुछ एथियस्ट भी थे जो खुदा के वजूद का यकीन नहीं करते थे.
I've lived so long in the Czech Republic.
मैंने चेक रिपब्लिक में बहुत ज्यादा वक्त गुजारा.
And I love atheists.
और मैं एथियस्ट लोगों से मोहब्बत करता हूँ.
I know that God loves them and He uses me to, so that they're loved through me.
मैं ये जानता हूँ खुदा उनसे मोहब्बत करता है इसलिए मैं भी उनसे मसीह वाले मोहब्बत करता हूँ.
I was a pastor and a church leader for so many years.
मैं चर्च का पासबंद था उस इलाके में बहुत सालों से.
But I would rather sit at a table with 3 or 4 atheists while they're drinking beer and then drinking something else, and I would rather spend 2 hours sitting with atheists than sitting with church leaders.
बनिस्बत चर्च लीडर के साथ बैठने के मैं ज्यादा वक्त गुजारना पसंद कर रहा था एथियस्ट लोगों के साथ जब वो बैठकर बीयर पीते थे और मैं साथा पानी पी रहा था कि उन तक खुदावंत की मोहब्बत को पहुंचाया था दूसरे लफ्ज में.
So among the letters of encouragement there were several from true atheists with no faith who wrote to me and said maybe I'll pause.
और बहुत से खतों में से जो एथियस्टों ने लिखे उनमें से कुछ थे जो के बड़े ही पक्के एथियस्ट थे जो खुदा के वजूद का इनकार करते थे.
They said, "Dan, I'm cheering for you. I'm pulling for you. I'm on your team for your health. Even I have prayed for you."
वो एथियस्टों ने जो खत लिखे उन्होंने कहा कि डैन हम आपकी तरफ हैं, हम आपकी टीम का हिस्सा हैं, हम आपके साथ हैं, हमने आपके लिए बहुत ज्यादा दुआ की है.
So So I went back to the Czech Republic and led a what we call an English camp. It's a Christian outreach English camp.
मैं वापस गया चेक रिपब्लिक में वहां पर हमने इंग्लिश कैंप शुरू किया हुआ था जिसमें हम इंग्लिश सिखाते थे जिसे इंग्लिश कैंप कहते हैं
We teach them English but we use Bible for part of the time as our English textbook
हम उनको इंग्लिश सिखाते थे लेकिन बाइबल मुकद्दस हम इस्तेमाल करते थे इंग्लिश सिखाने के लिए बहुत ज्यादा
We have Christian seminars we have testimonies we have Christian music and We sow the seed.
हम क्रिश्चियन सेमिनार करते थे और उसके साथ साथ भी क्या करते थे जी सेमिनार करते थे म्यूजिक होता था क्रिश्चियन और उसके साथ हम क्या करते थे जी बीज बोते
And at one point I said when we were all together I told my story of my healing.
और मैंने इस दौरान अपनी शिफा की कहानी उनको बताई कि किस तरह खुदा ने मौजजा किया
And I said Many people were praying for me, but the most important prayers were those of the atheist.
उन्होंने सुना कि बहुत से लोग आपके लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन उन सब में से जो अहम दुआ थी, जो गौर और फिक्र वाली बात थी, वो क्या थी जी? Atheist दुआ कर रहे थे.
And I said, I tried to imagine how an atheist might pray.
Say again.
I tried to imagine how an atheist would pray.
मैं एक दिन सोच रहा था ख्याल कर रहा था कि एक एथियस्ट ने जो खुदा के वजूद का इनकार करता है उसने किस तरह दुआ की होगी
So I said I imagine an atheist looking up and saying God I've never tried to talk to you before
किसी एथियस्ट का कहने मैंने सोचना शुरू किया कि उसने इस तरह खुदा से दुआ की होगी खुदा मैंने कभी तुझसे बात करने की कोशिश नहीं की
I don't know if you're there but my friend Dan Lupton sure thinks you're there
मैं नहीं यकीन करता कि तू मौजूद है लेकिन मेरा दोस्त डैन लिप्टन यकीन करता है कि तू वजूद में है
So God if you're real I ask you to heal my friend Dan
और एथियस्ट कहता है खुदा अगर तू वाकई हकीकी है तो मेरे दोस्त डैन को शिफा दे दे
I said God took those prayers very seriously
और मैं ये कहता हूं कि खुदा ने उनकी दुआ को बड़े ही संजीदगी से लिया होगा
Psalm 34 verse 8 says taste and see that the Lord is good
Zabur 34 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है जी 34 की 8वीं आयत में आओ देखो और मजा चखो खुदा कितना भला है
And I said God invited you atheist to take a little taste by praying for my healing and God answered
और मैंने उनको कहा कि खुदा ने आप एथियस को अपना जायका चिखाने के लिए आपकी दुआ का जवाब दिया कि कितना क्या है जी जबरदस्त है
And I said, now I gotta invite you.
इसलिए मैंने कहा कि मुझे उनको इनवाइट करना चाहिए
I said, this group will never meet again, just the way it is.
इसलिए मैंने सोचा कि वो ग्रुप दोबारा इकट्ठा नहीं होगा इस तरह
If we have an English camp next year, many of you will return, some won't, other people will come, but this group, these people will exist right now.
मैंने उनको कहा कि हो सकता है कि दोबारा हम इकट्ठे हों इंग्लिश कैंप के लिए लेकिन दोबारा जो यहाँ पर आज मौजूद हैं दोबारा वहां पर इकट्ठे नहीं होंगे इसलिए ये वो घड़ी है
I pulled out my New Testament.
इसलिए मैंने नया अहदनामा निकाला.
And I said, I'm going to look at the very last page. If you don't know where to find it, just open your New Testament to the last page.
और मैंने उनसे कहा कि मैं अपने नए अहदनामा के आखिरी सफे को खोलूंगा. अगर आपको नहीं पता कि ये कहां पर है, तो बाइबल की दूसरी तरफ आखिर पर चले जाओ.
At the very end of the Bible, it says, "The Spirit and the Bride say, 'Come.'"
Wow.
The Spirit and the Bride say,
I know I was just teaching in that one.
Well, up here?
Yeah. Praise God. मैं रुक गया मैंने उसे कहा पादरी साहब अभी अभी आखिरी हिस्सा ही हमने ये पढ़ा था 17वीं आयत को और रूह दुल्हन से कहता है आ
And I explained to them what that meant and I said I'm inviting you to come to Jesus.
मैंने उनको बयान किया कि इसका क्या मतलब है और मैंने उनको दावतनामा दिया कि मैं आपको दावत देता हूं कि यीशु को अपना शख्सी निजात इंदा कबूल करो.
And I told them how to come. I spent a few minutes explaining how to come to Jesus.
और मैंने उनको बयान किया कि किस तरह आप यीशु को अपना शख्सी निजात हिता कबूल कर सकते हैं.
And afterwards, a university girl came up to me and she said, "I'm one of those atheists who prayed for you."
और उसके बाद कुछ लम्हों के बाद एक लड़की आई जो कि एथियस्ट थी. उसने कहा कि मैं उन एथियस्टों में से एक हूँ जो तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी.
And she said, "You guessed pretty good. My prayer was very close to what you suggested."
और उसने कहा कि जो तुमने सोचा ख्याल किया कि एथियस्ट इस तरह दुआ कर सकता है, मेरी दुआ कुछ इस तरह ही की सी.
And I said, "Have you come to Jesus?"
फिर मैंने उसे कहा, क्या तुमने अभी तक यीशु को कबूल किया है या नहीं?
I said, "God answered your prayer, and you've got to do something about this."
और मैंने उसे कहा, खुदा ने तेरी दुआ का जवाब दिया है, इसलिए तुझे कुछ करना होगा.
And I matched her up with one of the lady leaders and said, "There's a tower coming up, and I want you to find the tower and talk to Jesus."
और मैंने कहा कि एक औरत से कि क्या करो कि एक टावर आ रहा है, आपने उस टावर पर चढ़कर क्या करना है, यीशु से बात करनी है.
Now the theme, the spirit and the bride.
जो हम थीम देख रहे हैं रूह और दुल्हन का,
is found at the end of the Bible, but it's also found in the book of Ephesians.
ये हिस्सा मुकाशवा की आखिरी बाब में पाया जाता है, लेकिन यही थीम, यही क्या है हिस्सा, हमें इफिसियों के खत में भी मिलता है.
One of the things I've done in discipling believers for many years, even young atheists who are now Christians, has been to teach them who they are in Christ from the book of Ephesians.
जो मैंने अपनी तालीम के दौरान किया है एथियस्ट को या एक ईमानदार मसीही को, बाइबल मुकद्दस की तालीम देते हुए शिगिर्दियत का सबक देते हुए, वो क्या है, उनको सिखाया कि वो कौन है यीशु मसीह ने.
I have a list here and I probably shouldn't read it because it takes too much time.
No, go ahead. It looks good. कह रहे हैं कि यहाँ पर एक लिस्ट है जो कि बहुत बड़ी है, क्या मैं इसे पढूं या ना पढूं? मैंने कहा जी है, पढ़े जी, बहुत अच्छी लग रही है.
Oh, let's just do it and do it. You just go ahead and read it. We'll save time.
Okay, इसे पढ़ते हैं. सेंट, आप मुकद्दसीन हैं, आपको फजल मिला है, आप यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बनाए गए हैं, आपको रहम, आप पर रहम किया गया है, आपको सुलह का पैगाम दिया गया है, आप मुकद्दस लोग हैं, आपको बाबरकत उम्मीद मिली है, आप रूहानी नेमतों के मालिक हैं, आपको चुना गया है, आपको चुना गया है जो जमीन की फाउंडेशन यानी के बुनियाद से पहले, आप क्या हो जी, बेऐब हो, आपको मोहब्बत की गई है, आप क्या हो जी, प्रीडेस्टिन्ड फॉर अडॉप्शन, आप क्या हो जी, ले पालक होने के लिए अलग किए गए हो जी, आप खुदावंद के बेटे हो, आपको छुड़ाया गया है उसके खून के वसीला से, आपके गुनाह माफ किए गए हैं, आपको इल्म दिया गया है, आप पर रूह की मोहर की गई है, आपको क्या की है जी, मेराज दी गई है, आपका ईमान पुख्ता किया गया है, आपके पास जिंदा उम्मीद है, आप खुदा की कुदरत रखते हैं, आप मसीह में जिंदा हैं, आप खुदा के फजल से बचाए गए हैं, आप खुदावंद में मुर्दों में से जलाए गए हैं, आप उसके साथ आसमानी पर मकामों पर बिठाए गए हैं, आप खुदावंद खुदा में उसके शागिर्द हैं, आप खुदावंद की क्या है जी, मोहब्बत फैलाने वाले इस दौर में उसके तोहफे हैं, आपको निजात तोहफे में मिली है, आप खुदा के साथ काम करने वाले हैं, आप मसीह में नए मखलूक बनाए गए हैं, आप मसीह में नए कामों को करने के लिए तैयार किए गए हैं, आप से क्या है जी, दूर नहीं है, अब आपसे क्या है जी, नया वादा किया गया है, आपको एक नया अहद दिया गया है, यीशु के वसीले से आप नजदीक हो गए हो, आप उसमें एक नई मखलूक हो, अब कोई यहूदी और गैर यहूदी नहीं रहा, आपकी खुदा के साथ सुलह हो चुकी है, आपको खुदा तक रसाई है, आप उसके हेवनली सिटीजन, आप आसमानी शहरी और उसके मकामी हैं, आप खुदा के घर के क्या है जी, रुकन हैं, आप उसका मकदस हैं, आप उसमें एक किए गए हैं, आप उसमें तामीर किए गए हैं, आप उसके रहने की जगह है, आप जैसा कोई और है ही नहीं। I didn't mention the bride.
And one more.
एक और आपने कहीं दुल्हन के बारे में बात तो नहीं की, मैंने कहा नहीं।
In Ephesians chapter 5, we're told to walk wisely. Ephesians 5:15. Look carefully how you walk, not as unwise, but as wise.
जब हम इफिसियों 5 बाब उसकी 15 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं, बल्कि दनाओं की मानद चलो।
And then 90% of what he says in the next few verses has to do with marriage.
और अगले हिस्से में जो 90% पालूस बात करता है, वो क्या है जी? शादी से तल्लक या वाबस्ता बातें हैं।
And we learned earlier that the walk reveals a divine expectation.
और यहाँ पर हम सीखते हैं, जैसे अभी हमने सीखा, कि जो वाक है वो क्या है जी? डिवाइन एक्सपेक्टेशन है, यानी कि अल्लाही तवक्को है जो चलने के साथ तल्लक रखती है।
Here's a great example. Walk wisely, and then he says, husbands live with their wife like this, and wives live with their husbands like this.
जब उसने कहा कि बस गौर से देखो कि तनाव की मानक चलना है, तो वो कहता है कि खामन को अपनी बीवी के साथ ऐसे, और बीवी को अपने खामन के साथ ऐसे जिंदगी बसर करनी है।
We learn what God expects of us if we're married.
Say again.
We learn what God expects of us if we're married.
हम सीखते हैं कि खुदा हमसे क्या तवक्को करता है जब हम शादीशुदा होते हैं।
We learn what God expects of us if we're pastors preparing people for marriage.
और खुदा हमको सिखाना चाहता है कि हम सीखें कि किस तरह पासबानी खिदमत को करना है, कि पास लोगों की पासदानी करें।
We learn what God expects of us if we get involved in counseling and helping somebody whose marriage is in trouble.
और हम सीखते हैं कि खुदा हमें सिखाना चाहता है कि उनकी मदद करें जिनकी हमें मशवरत करने की जरूरत है, कि उनकी शादीशुदा अज़्दवाजी जिंदगी दुरुस्त नहीं है।
So walk wisely, and here are the expectations.
और गौर से चले, तनाव की मानत चले, ये क्या है जी? अल्लाही तवक्को है जो खुदा हमसे करता है।
Then we have a strong application.
उसके बाद एक बड़ा ही मजबूत अतलाक है जो खुदा हमसे चाहता है।
It's an application of a higher spiritual reality.
और ये अतलाक क्या है जी? बड़ा ही बुलंदो बाला है, एक रूहानी क्या है जी? इतलाक है।
Because 6 times the word Christ is mentioned.
6 दफा लफ्ज मसीह इस्तेमाल किया गया है।
One time the word Savior.
एक दफा निजात दहिंदा।
One time the word Lord.
एक दफा खुदावंद।
And I'm just talking about in these verses about marriage.
और इन आयात में मैं बात कर रहा हूँ जो 15वीं आयत से बाब के आखिर तक है, जिसमें क्या है जी? अज़्दवाजी जिंदगी की बात हो रही है।
Wives, submit yourselves to your husbands as we do to the Lord.
और जैसे लिखा है, ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की।
Husbands, love your wives as Christ loved the church.
इसलिए शोहरों, खुदावंद क्या कहता है शोहरों के लिए? गए अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की।
And it goes through this in detail. Husbands, take care of your wives just like Christ is taking care of the church and cleaning her up and preparing her for what's coming.
यहाँ पर हम बड़े तफसीलन तौर पर देखते हैं कि पालूस रसूल कहता है कि जैसे मसीह ने कलीसिया की क्या है जी? देखभाल की है। खामदों, अपनी बीवी की वैसे ही देखभाल करो जैसे मसीह ने तुम्हारी की है।
Cherish your wives as Christ cherishes his wife.
जैसे मसीह अपनी दुल्हन के लिए क्या है जी? उसे खुश करता है। आपको भी अपनी बीवी के लिए खुशी करनी है।
He says, as he gets to the conclusion, he says, maybe you think I'm just talking about marriage on earth.
जब वो इस नतीजे पर पहुंचता है, तो वो कहता है कि हो सकता है कि तुम सोच रहे हो कि मैं सिर्फ जो शादीशुदा अज़्दवाजी सफर है, वो सिर्फ एक जमीनी लिहाज से बात कर रहा हूं।
But he said, this is a profound mystery.
लेकिन वो कहता है कि ये बड़ा ही अजीब भेद है.
And it refers to Christ and the church.
और वो इस बात की तरफ मतवज्जो कराता है कि ये मसीह और कलीसिया के साथ तायन रखता है.
Now this is the second time I believe in the book of Ephesians that the word mystery has come up.
और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये दूसरी दफा है जो लव्स क्या है जी पोशीदा का इस्तेमाल किया गया है एफसीयू के खत में.
A mystery is something that's always been true.
जो भेद होता है वो क्या है जी हमेशा सच्चा होता है.
But sometimes the prophets didn't understand even what they were teaching.
लेकिन बहुत से नबियों को उस भेद की समझ नहीं थी जो बातें पोशीदा थी.
And so they were sort of in a haze on something.
और वो कुछ इस तरह कह सकते हैं कि वो किसी क्या है जी ऐसे धुंधले माहौल में हो कि वो देख नहीं पाए कि खुदा क्या कहना चाह रहा था.
And now when it comes to the New Testament, it says I'm going to show you a mystery. It's sort of I'm going to take the sunglasses off so you can see everything very clearly.
और नए अहदनामा में हम देखते हैं कि वो कहता है कि अब मैं चाहता हूं कि वो धूप वाले चश्मे उतार कर जरा इस पोशीदा भेद को जानो कि क्या है.
But here in Ephesians 5, it doesn't just say, I'm explaining to you a mystery. It says, I'm explaining to you a profound mystery.
वो ये नहीं कहता इफिसियों 5 बाब में कि मैं तुमको एक भेद बयान करूंगा. वो कहता है एक ऐसा पोशीदा भेद जो बड़ा ही गहरा है पोशीदा है.
This is significant. This is very important. This is one of the biggest ones.
वो कहता है ये बहुत अहम है ये बहुत ही क्या है जी गहरा है बड़ा ही इसकी बड़ी अहमियत है.
You are to be living out in your home a reality that is so spiritual, so blind, that is just one of the most profound things to imagine.
वो उनको चाह रहा है कि तुम्हें इस हकीकत में जिंदगी बसर करनी है कि ये वो हकीकत है जो पहले किसी पर जाहिर नहीं की गई.
Much of the Bible follows this pattern.
बाकी तमाम बाइबल के जो हिस्से को देखते हैं वो इसी तल्लक से निस्बतना रखते हुए सिखाई जाती है या सीखी जाती है.
Jesus is very God. He's completely God.
यीशु मसीह जिस्म में मुकम्मल खुदा है.
Jesus became flesh and became very man, completely man.
और यीशु मसीह क्या बना जी मुकम्मल इंसान बना के वो तजस्सुम में मजस्सुम होकर इंसान का रूप धारे.
Something eternal in the heavens became real and practical in this world.
के कोई अल्लाही हस्ती क्या बन गई जी प्रैक्टिकल तौर पर इंसान बन गया.
As the psalmist David was becoming a very old man, in 2 Samuel chapter 23, he said this.
जब दाऊद बूढ़ा हो रहा था तो उसने दूसरे सैमुएल में ये कहा.
He said, "These are the last words of David."
उसने कहा ये वो आखिरी लव्स या कह सकते हैं जी रकम करने वाली बातें हैं जो दाऊद ने लिखी.
He says, "The Spirit of God speaks by through me."
उसने कहा कि खुदा का पाक रूह मेरे वसीला से बोलता है.
And God's word has been in my tongue.
उसने कहा कि खुदा का कलाम मेरी जुबान पर है.
So when we read or sing the psalms, we are hearing the words of David and his heart and his emotions and his own soul.
जब हम ज़बूरों को पढ़ते हैं गाते हैं तो हम दाऊद के जज्बात को एहसास को जो उसने गाकर लिखे हैं करते हैं मिलकर पढ़ते हैं.
At the same time, the Spirit of God was speaking through him.
लेकिन यक वक्त खुदा का रूह उसके वसीला से बात कर रहा था.
In fact, every word of the 150 Psalms was the word of God coming through the pen and the tongue of David.
हर एक लफ्ज जो ज़बूर 150 में लिखा गया है जो दाऊद की जुबानी और उसकी कलम से कलम बंद किया गया है वो खुदा का कलाम है.
Did David write the Psalms or did God write the Psalms?
क्या दाऊद ने ज़बूरों को लिखा या खुदा ने दाऊद से ज़बूरों को लिखवाया?
It was 100% both.
हम कहेंगे कि 100% दोनों ही थे दाऊद ने 100% लिखा, 100% दाऊद से खुदा ने लिखवाया.
So here we are with marriage, and marriage is like that. It's 100% something God is concerned with eternally, and it's also 100% something you and I live with every day on this earth.
शादी का भेद भी ऐसा ही है कि खुदा 100% इसे क्या बनाता है, आसमानी और अवधि बनाता है, और 100% उसे वो क्या है जी, हमें सिखाना चाहता है कि उसे कैसे करना है.
Okay, now your third point was to sit connects us to a divine proclamation.
मेरा जो तीसरा नुक्ता था वो क्या था जी, बैठने से था, जिसका हमने कहा लिखा था जी डिवाइन प्रोक्लेमेशन, यानी कि अलाही इतलाक.
Being the bride of Christ, Christ becomes part of our missionary outreach.
यीशु मसीह की दुल्हन होते हुए, उसके बदन का हिस्सा होते हुए, हमारा जो मकसद है वो क्या है कि अलाही अलान करें.
The Spirit and the bride together say to lost people, come.
के दुल्हन के रूह और दुल्हन दोनों मिलकर खोए हुओं को कहते हैं कि आओ.
Okay, now I told you I'm an old man and I've been an evangelist in some way for 50 years.
जैसे मैंने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और पिछले 50 साल से खिदमत को कर रहा हूं.
But I'm finding new pleasure when I understand I do it as the bride of Christ.
लेकिन ये मेरे लिए एक बड़ी ही खुशी का एहसास है जब मैं पढ़ता हूं, सीखता हूं कि इस बात को कि मैं मसीह की दुल्हन हूं.
The theme of Ephesians 5, the profound mystery, the bride of Christ, is a big theme in the Bible.
इफिसियों 5 बाब में जो दुल्हन का भेद है, ये भेद, ये राज क्या है जी, बहुत बहुत गहरा है, बयान से कह सकते हैं कि बाहर है.
And like a great symphony concert coming to its climax, so the book of Revelation begins to say the bride of Christ, the bride of Christ, the bride of Christ, the bride of Christ over and over again at the end of the book of Revelation.
जैसे कब कोई कॉन्सर्ट खत्म हो रहा होता है तो आखिर में उनका जो एक ही जुमला होता है, वैसे ही मुकाशवा की किताब बार बार कहती है दुल्हन और रूह, दुल्हन और रूह, दुल्हन और रूह, और इसे आखिर में हम बड़े ज्यादा तौर पर देखते हैं.
Revelation 19:7 says this.
मकाशवा उसका 19वां बाब उसकी 7 आयत में यूं लिखा है. Should I read it?
Yes.
7वीं आयत में लिखा है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमा हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रे की शादी आ पहुंची है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया.
Now I confess that the image of the bride of Christ is something I have a hard time relating to.
मैं इस बात का इकरार करना चाहता हूं कि मसीह की दुल्हन, जब उसकी तस्वीर को मैं देखता हूं तो मुझे मुश्किल होती है कि मैं उसे किससे निस्बत दूं.
I've never been a bride.
क्योंकि मैं कभी भी दुल्हन नहीं बना.
I've never wanted to be a bride.
मैं कभी भी दुल्हन नहीं बनना चाहता था.
I don't think I would look good in a white lace wedding gown.
मैं सोचता हूं कि अगर मैं शादी का गाउन पहन लूं तो मैं एक अच्छी दिखने वाली दुल्हन नजर नहीं आऊंगा.
There's a gender gap issue for me when I think of myself as Christ's bride.
लेकिन हमारे अंदर जो तजस्स पैदा होता है वो क्या है कि मैं मेल हूं और मैं कैसे दुल्हन बन सकता हूं.
But when we get past the gender issue, we realize that Christ is talking about Him and us being about the most intimate kind of relationship.
जब हम मुज़क्कर और मौनस की इस जंग के ऊपर हावी होते हैं तो फिर हम इस बात की सच्चाई तक पहुंचते हैं कि यीशु बात कर रहा है अपने और हमारे दरमियान कि हम उसकी दुल्हन हैं.
So we have the wedding of the bride in Revelation 19.
और यहां पर हम देखते हैं दुल्हे की शादी को 19वें बाब में मकाशवा की किताब में.
And then in Revelation chapter 21 we read this, come I will show you the bride, the wife of the lamb.
और मकाशवा 21वां बाब जब हम उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर हमें सीखने को क्या मिलता है, और यूं यहां पर लिखा है 21वां बाब उसकी 9 आयत को.
And then we have a description of a beautiful city.
Let me read the 9 verse 9. फिर उन सात फरिश्तों में से जिनके पास सात प्याले थे और वो पिछली सात आफतों से भरे थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रे की बीवी दिखाऊं.
Then we have a beautiful description of something that doesn't quite sound like a bride, but it is.
यहाँ पर एक तस्वीर कशी की गई है जो दुल्हन को पेश करने के लिए बयान की गई है, लेकिन उसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है जिसमें हम देखेंगे.
The bride is described as a beautiful city of people.
और यहाँ पर जो तस्वीर पेश की गई है वो क्या है? दुल्हन को किस तरह पेश किया गया है जी? एक शहर से निस्बत दी गई है.
But anyway, in Revelation 21, we have the presentation of the bride. I imagine photos and videos, so will be taken. In Revelation 21, we have the presentation of the bride. I imagine photos and videos will be made.
हाँ जी, जब हम 21वें बाब को पढ़ते हैं 9वीं आयत से, तो यहाँ पर जो क्या है जी, प्रेजेंटेशन यानी के जो बयान किया गया है, पेशकश की गई है दुल्हन के लिए. इसके लिए हमें बहुत सी तस्वीरें और वीडियो मिल सकती है कि वो कैसी होगी.
And then the Bible finishes again with the spirit of the bride say come. This is like a trinity, like three times it's been the emphasis.
और जब हम काशवश किताब को देखते हैं तो तीन दफा हम इस लफ्ज को देखते हैं, दुल्हन और रूह को और दुल्हन को. और आखिरी दफा मकाशवर की किताब में जब देखते हैं तो इसका तल्लक कैसे है? जैसे तसलीस के साथ है. तसलीस में तीन अकदूम पाए जाते हैं.
Recently, my wife and I were watching a TV program together.
कुछ अरसा पहले मैं और मेरी बीवी टीवी प्रोग्राम देख रहे थे.
And about two-thirds of the way through, she said, I can't figure out how they're going to end this program.
दूसरे और तीसरे हिस्से के दरमियान जैसे हम उस प्रोग्राम को देख रहे थे, मेरी बीवी ने कहा, मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका अंत कैसे होगा.
I said, I think the program will end with a party.
मैंने उसे कहा कि ये प्रोग्राम खत्म होगा कि आखिर में दावत होगी.
She said, why do you think that?
मेरी बीवी ने कहा, तुमने ये क्यों ऐसा सोचा?
I said, because a half hour ago at the beginning of the program they mentioned a party twice and now they've ignored it.
और मैंने अपनी बीवी से कहा कि प्रोग्राम के शुरुआती हिस्से में उन्होंने दावत का दो दफा जिक्र किया, लेकिन बाकी सारे प्रोग्राम में उन्होंने दावत का इनकार या उसको क्या कह सकते हैं, अनदेखा कर दिया है.
And he said, a well-written story always ties the finish back to the beginning.
और मैंने कहा कि जो कहानी दुरुस्त और शुद्ध तरीके से लिखी होती है उसकी शुरुआत में जो बयान किया जाता है वो आखिर में उसके साथ क्या है जी, जोड़ मेल बड़ा ही मफीद तरीके से होता है. और जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो क्या हुआ? आखिर में दावत हुई और सब दावत के लिए गए. और मैंने अपने सर पर हाथ मार के कहा, ओए.
The Bible finishes with a wedding.
के बाइबल मुकद्दस कहानी को भी शादी ही से खत्म करती है.
And the Bible begins with a search for a bride for Adam.
और बाइबल की शुरुआत भी शादी ही से होती है.
It's not good for the man to be alone.
क्या लिखा है? ये अच्छा नहीं कि आदम अकेला रहे.
How did God just like that know that?
खुदा किस तरह जान सकता है एक मिनट में कि ये करने की जरूरत है?
We say he's God and God knows everything.
आप कहेंगे वो खुदा है, खुदा सब कुछ जानता है.
No, it's more than that.
वो इससे भी ज्यादा है कि वो सब कुछ नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा जानता है.
The Adam in the book of Genesis is called the first Adam and Jesus is called the second Adam.
जब हम पदेश की किताब को देखते हैं तो आदम को पहला आदम कहा गया है और यीशु को दूसरा आदम कहा गया है.
And Adam was created with the image and the likeness of the soul. He was like Jesus. He was created by Jesus in his own image.
आदम को जब देखते हैं उसको खुदा की शबीह पर उसके जैसा बनाया गया. दूसरे लफ्जों में मसीह ने उसे अपनी मानद बगैर गुनाह के पैदा किया.
And God knew that Adam needed a bride because the purpose of the human race was to find a bride for Jesus.
खुदा जानता था कि आदम के लिए दुल्हन ढूंढना लाजमी है ताकि उसके पास दुल्हन हो, वैसे ही मसीह के लिए भी दुल्हन जरूर होगी।
The Lord created the human race to be his bride, and Jesus showed up every day at the cool of the day to spend time with Adam.
जब खुदा ने आदम को बनाया तो आदम के साथ रफाकत करने के लिए ठंडे वक्तों के दौरान कौन आता था? यीशु मसीह गुफ्तगू करने के लिए आता था उस दुल्हे और दुल्हन के साथ।
But Genesis 6 says the world didn't want God, didn't want Jesus to be there, connected.
और पदेश 6 बाब को पढ़ते हैं तो उसके मुताबिक पता चलता है कि दुनिया नहीं चाहती थी, दुनिया की ख्वाहिश नहीं थी कि वो खुदा के बनाए हुए निजाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें।
No bride had been found.
और दुल्हन नहीं मिली।
So the Lord looked to Abraham and the nation through him as a potential bride.
और खुदा ने क्या किया? इब्राहिम के वसीला से इब्राहिम के पास जाता है कि उसकी कौम को चुने के वो उसकी दुल्हन हो जाए।
In Mark chapter 12, a religious scholar asked Jesus, "Which commandment is the most important of all?"
जब हम देखते हैं मरकुस की इंजील में तो वहां पर मजहबी रहनुमाओं ने यीशु से पूछा कि कौन सा हुक्म बड़ा है?
Jesus said, "The most important is Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one."
Wow. वहाँ पर यीशु मसीह ने उनको क्या कहा कि लिखा है कि सुन ए इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है।
And you shall love the Lord your God with all of your heart.
और तू उसे अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत करना।
With all of your soul and with all of your mind and with all of your strength.
और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से उससे मोहब्बत रखना।
This is a quote from Deuteronomy chapter 6, which is called the Shema.
Wow, ये वो हवाला है जो इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 4 और 5 आयत में से हमें मिलता है। इसे क्या कहते हैं जी? ये है वो यहूदियों की दुआ है।
The Shema is the daily prayer of many Jewish people today.
ये क्या है जी? शीमा जो है जी प्रेयर है रोजमर्रा की यहूदियों की दुआ।
It's similar to the Lord's prayer for many of us.
और ये हमारे लिए जैसे खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ है, वैसे यहूदियों के लिए ये क्या थी? दुआ थी।
It's a summary of faith.
ये उनके ईमान का इकरार था।
It's a pledge of allegiance.
और ये उनके ईमान की पुख्तगी में क्या था जी? अकीदा, इजहार था कि वो इस बात पर मुत्तफिक हैं।
And it's like a wedding vow.
और ये एक शादी के वादे की तरफ भी इशारा करता है कि ये शादी का वादा है।
A bride and groom should love each other with all of their heart, soul, mind, and strength.
जैसे खामद और बीवी जो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, वो एक दूसरे को किस तरह कहेंगे?
But Israel repeatedly sought after other gods and would not be the perfect fit as a bride for Jesus.
लेकिन इस्राएलियों ने क्या किया? उन्होंने खुदा की दुल्हन बनने की बानिस्बत गैर मबूदों के साथ हम अगोशी करना शुरू कर दी।
The search for a bride went global.
और जो दुल्हन की क्या थी जी तफशीश में खुदा क्या हुआ जी? उसने उसे पूरी दुनिया में ढूंढना शुरू कर दिया। नेशन से पूरी दुनिया में उसने तलाश करना शुरू कर दी।
In Matthew chapter 22, Jesus spoke to them in parables, saying, "The kingdom of heaven is like a king." Who prepared a wedding banquet before his son?
मत्ती की इंजील उसके 22वें बाब की जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने तमसील को बयान करते हुए कहा कि खुदा की आसमान की बादशाही ऐसी है जैसे बादशाह ने शादी की क्या की है जी? तैयारी की है अपने बेटे की।
He sent his servants to those who had been invited to tell them the time has come to come, but they refused to go.
उसने अपने खादिमों को भेजा कि जाओ जाकर बुलाने वाले बुलाए हुओं को बुलाकर लाओ, लेकिन जो बुलाए हुए थे उन्होंने आना पसंद नहीं किया।
So the king said to his servants, "Well, go into the street corners and invite to the banquet anyone you can find."
और बादशाह ने कहा कि जाओ गलियों और कूचों और बाजारों में और जहां कहीं भी जा सकते हो जाकर सबको दावत दो और उनको इस शादी में शामिल करो।
So they went into the streets, they gathered all the people they could find, the bad as well as the good, and the wedding hall was filled.
वो गलियों में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, उन्होंने अच्छों को, भलों को, चंगों को, बुरों को, सबको इकट्ठा किया और शादी का जो क्या है जी दावत खाना है वो मेहमानों से भर गया.
This is a shift from a Hebrew bride to the good and the bad from wherever.
यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या है जी वो अलहदगी का इजहार है जहां पर बयान किया गया है कि जी बुरों और चंगों को इकट्ठा किया गया अब्रानी जबान में.
Now, I'm not excluding the Hebrew people. They're still God's first chosen people.
इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ने अब्रानी यानी कि अब्रानी लोगों को यहूदी लोगों को रद्द कर दिया. नहीं वो अभी भी खुदा ही के लोग हैं.
Many will be in our part of the bride of Christ.
और वो रहेंगे भी जैसे हम उसकी दुल्हन का हिस्सा हैं वो भी उसकी दुल्हन का हिस्सा है.
Book of Romans chapter 11 anticipates a great turning to Christ among these people.
और जब हम रोमियो 11वें बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है जी इंतजार हो रहा है कि जब तक उन पर वाजिया किया जाए तो वो हिस्सा बनेंगे.
Jesus wants his bride from every tribe and tongue and nation. He wants his bride from every part of the world.
यीशु मसीह चाहता है उसकी दुल्हन हर एक कबीले से हर एक कौम से हर एक मुल्क से हर एक जुबान से हर एक रंग से उसकी दुल्हन हो.
And that's my to realize that we're the bride of Christ, but the bride is bigger than us.
हम दुल्हन हैं लेकिन हम दुल्हन को जब देखते हैं तो दुल्हन का जो नजरिया है वो कहीं बढ़कर है.
So the spirit of the bride say come.
रूह ने कहा कि दुल्हन आ.
Who invites people to come to Jesus? Who invites people to come to Jesus?
कौन लोगों को दावत देता है कि यीशु के पास आएं?
The Holy Spirit invites.
खुदा का पाक रूह ये काम करता है.
God's spirit uses creation. खुदा
खुदा का रूह उसकी तखलीक को इस्तेमाल करता है.
The Bible and friends.
और खुदा अपने कलाम को और दोस्तों को इस्तेमाल करता है.
The Holy Spirit uses the trials of life.
खुदा का पाक रूह रोजमर्रा के इम्तहानों को इस्तेमाल करता है.
The guilty conscience.
और जो एहसास से जुर्म की क्या है जी जो जमीर है उसे बयान उसे इस्तेमाल करता है.
The dry emptiness of the godless life.
और सादा और खाकी और खाली और बगैर खुदा के जिंदगी जैसे एहसास के लिए खुदा का रूह बुलाता है.
The bride invites people to Christ.
दुल्हन बुलाती है लोगों को यीशु मसीह के पास.
I'm a missionary wherever I am.
मैं हूँ मिशनरी जहां कहीं भी मैं रहता हूँ.
On planes.
जगहों पर
in taxis,
गाड़ियों में
in the Czech Republic or in Texas,
टेक्सस में हूं या चेक रिपब्लिक एरिया में हूं
on 5 continents,
और या 5 बड़े आसम में हूं.
I've had wonderful global experiences of meeting people and inviting them to Jesus.
मैंने बहुत जबरदस्त तजर्बा हासिल किया है यानी कि ग्लोबली तौर पर के मसीह के लिए लोगों को बुलाया जाए.
Recently I got in a Uber, or to say taxi, I guess, to go to the Dallas, Texas airport.
अभी यहाँ पर आने से पहले Uber जिसे टैक्सी कहते हैं मैंने उसे बुलाया कि वहाँ से मैं क्या करूँ जी टेक्सास एयरपोर्ट पर जाऊँ.
I quickly asked my Uber driver what part of the world she was from.
मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि आप दुनिया के किस ममालक से हो.
She said from Pakistan.
उसने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ.
Said this was a few months ago. It didn't happen this week.
इस हफ्ते नहीं हुआ ये कुछ महीनों की बात है.
I said wow, how long have you been here?
मैंने कहा वाह कितनी देर से आप यहाँ पर हो.
So I came with my parents 20 years ago when I was 16.
उसने कहा मैं अपने माँ बाप के साथ आई थी 20 साल पहले जब मैं तकरीबन 16 साल की थी.
I did some quick math and decided she was 36.
और मैंने अपनी रिहाजी को देखा कि इसका मतलब है कि वो अब 36 साल की है. 16 साल पहले आई थी तो 20 साल हो चुके थे यहाँ पर तो 36 साल की होगी मुकम्मल.
She told me that they came from Pakistan and moved to Chicago.
और उसने मुझे बताया कि वो पाकिस्तान से आए और शिकागो में मुकीम हुए.
And so I said, now you're in Texas. And she said, yeah, we moved here. I got a divorce and I brought my teenagers down here 2 years ago.
उसने कहा कि 2 साल पहले मेरी तलाक हो गई तो इसलिए मैं अपने छोटे बच्चों के साथ अब मैंने टेक्सस में क्या कर दिया है जी खरूज कर दिया यहाँ पर रहते हैं.
She said, I said, do you like driving the taxi?
मैंने उसे कहा क्या तुझे पसंद है टैक्सी चलाना.
She said, well, I have another job. That it doesn't pay enough, but it's very expensive to raise 2 teenagers as a single mom.
उसने कहा कि मेरी एक और भी जॉब है क्योंकि दूसरी जॉब ज्यादा इनकम पैदा नहीं करती कि अपने 2 बच्चों की देखभाल और उनकी जरूरतों को पूरा करूं इसलिए मैं टैक्सी चलाती हूं.
She said life is hard and you have to do what you must do.
उसने कहा कि जो जिंदगी है वो बड़ी कठिन है मुश्किल है इसलिए आपको जो कुछ कर सकते हैं उसे गुजारने के लिए करना होगा. जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे एथियस के साथ बात करना पसंद है वैसे ही मैं सर पाकिस्तानी औरत से बात कर रहा था.
I said, how did it go with bringing your boys from Chicago down here? I mean, I said they probably had friends in the school there.
मैंने उसे कहा कि तुमने किस तरह अपने बच्चों को शिकागो से यहाँ पर लेकर आई है क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों को सबको छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आए होंगे.
She said it was so hard, it was really hard, but they've adjusted, they're doing okay now.
उसने कहा बड़ा मुश्किल था कि अपने बच्चों को जहाँ पर हम रह रहे थे वहाँ से लेकर टेक्सास में आए.
I said twice now, you've told me that life is hard.
मैंने उसे कहा कि तूने 2 दफा कहा कि जिंदगी बड़ी कठिन है.
I said, does your God help you? Does he encourage you? Does he lead you? Does he supply your needs? Does he show up in your life when it's hard?
मैंने उसे कहा कि क्या खुदा ने जिसकी तू इबादत करती है तेरी मदद नहीं की कभी तुझ पर जाहिर नहीं हुआ किस तरह उसने तेरा हौसला बढ़ाया है क्या उसने किया है.
She said, God's up there and life is down here and life is hard and God's got nothing to do with my life.
उसने कहा खुदा ऊपर रहता है मैं नीचे रहती हूँ इसका खुदा का मेरी जिंदगी से कोई तलक नहीं इसलिए जिंदगी बड़ी कठिन है.
I said, well, my experience is so much different.
मैंने उसे कहा कि मेरा तजर्बा बहुत ही मुख्तलिफ है तेरे तजर्बे से.
I said, I've been a Christian for so many years and it just gets more exciting for me all the time.
उसने मैंने कहा कि मुझे मसीही हुए हुए बहुत अरसा हो गया है और हर साल क्या है जी बड़ा ही जबरदस्त तजर्बा हो रहा है.
I said, every day my wife and I finish the day. I'm looking for something here. Every day my wife and I finish the day.
मैं और मेरी बीवी हर रोज जब अपना दिन खत्म करते हैं.
By looking back over the day and saying, wow, God has been so good to us today.
और जब हम सारा दिन जो गुजर जाता है बैठकर बात करते हैं तो कहते हैं खुदा बहुत भला है हमारे साथ आज के दिन में.
He guided in this conversation.
उसने इस सारी गुफ्तगू में हमारी रहनुमाई की.
He protected me from a near accident, you know, in a car.
उसने मुझे हादसों से महफूज किया जो कार एक्सीडेंट के हो सकते थे.
He sent a friend to say the right word of encouragement.
उसने दोस्तों को भेजा जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की.
And I said, every day we finish the day by going over the day and saying, God is good to us here and here and here and here and here.
मैंने उससे गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिन के आखिर में हम एक दूसरे से बात करते हैं खुदावंद वहां पर अच्छा था यहाँ पर अच्छा था ऐसे उसने काम किया वैसे उसने काम किया और हम कहते हैं खुदा भला है.
I said, what do you think about that?
मैंने उस औरत से कहा तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है.
I think that really sounds good. I never heard of anything like that before.
उसने कहा कि सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने कभी ऐसा तजर्बा नहीं किया.
I said, I have a friend. She was not a Christian. She wasn't of your religion. She was of no religion.
मैंने उसे कहा कि मेरी एक दोस्त थी जो कि किसी मजहब से तल्लक रखती ही नहीं थी.
For a while, she tried to convert me to her atheism.
उस औरत ने बहुत कोशिश की कि मुझे मसीही से एथियस बनाए.
But now she loves Jesus and is a follower of Jesus.
लेकिन अब वो एथियस्ट क्या है जी, यीशु मसीह की मानने वाली और यीशु से मोहब्बत करती है.
And we still write to each other. She's in the Czech Republic and I'm here in America. We write to each other frequently.
मैंने उसे कहा कि वो चेक रिपब्लिक में रहती है, मैं अमेरिका में रहता हूं, तो हम एक दूसरे से ईमेल या खतो खताबत के जरिए से गुफ्तगु करते रहते हैं.
And I said every email has several thoughts about how God has been so good to me in the last little bit. He's helped me here, he's blessed me here, he's led me here.
और हमारी गुफ्तगु के दौरान जब पढ़ते हैं दूसरे की गुफ्तगु, तो उसकी गुफ्तगु में होता है वो मुख्तलिफ जगहों पर कई दफा ये बात कहती है, खुदा भला है, खुदा चंगा है, उसने मेरे साथ ये किया, ये बहुत अच्छा था.
And I said at some point I told her we're going to write a book about this.
और मैंने उसको कहा कि हमने क्या करना है कि जी इस पर एक किताब लिखेंगे.
And then a couple years later she said hey let's write that book.
और उसने कहा क्यों ना हाँ इस पर एक गुफ्तगु लिखी, एक किताब लिखी जाए.
And I said, it's the story of her journey from being a hard, discouraged atheist to an excited follower of Jesus.
और इस किताब में उस शिकस्त खुर्दा एथियस को जो ना अमीद थी उसकी कहानी लिखी गई कि किस तरह उसने मसीह को पाया.
I said, would you be interested in that book?
मैंने उस औरत से कहा कि क्या आप इस किताब में दिलचस्पी रखती हूँ.
Yeah, I think I want to read that.
उस औरत ने कहा हाँ मैं सोचती हूँ मैं उस किताब को पढूंगी.
I said I've already had a God sighting today. I told her I said I've already had a God sighting of His blessing today.
मैंने उसे कहा कि हाँ मैं पहले ही खुदा की एक बरकत को देख चुका हूँ जो उसने मेरे लिए दी है.
I said it's no accident that you're the one that picked me up.
और ये कोई हैरानगी की बात नहीं कि तुम हो जिसने मुझे आज यहाँ से ले जाने का दूसरी जगह पर आई हो. उसने कहा मैं भी सोच रही थी कि क्यों तुम ही को मैं आज लेने आई हूँ. ये टैक्सी ड्राइवर की बात हो रही
है.
एयरपोर्ट पर पहुंचकर जब अपने सूटकेस को मैंने लगेज को बाहर निकाला और जाने से पहले से मैंने कहा मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं.
And with people walking by us with suitcases, I'm praying aloud.
लोग अपने अपने लगेज सूटकेस को लेकर आ जा रहे हैं और मैं बुलंद आवाज से दुआ कर रहा हूं.
Thanking God that we had met.
खुदा का शुक्र कर रहा हूं कि हमारी मुलाकात हुई.
Thanking God that He had arranged it.
और खुदा का शुक्र हो के हम यहाँ पर हैं.
Thanking God that he knew this woman was thinking about her and loved her.
और खुदा का शुक्र किया कि खुदा इस औरत के बारे में सोचता है और उससे मोहब्बत करता है.
Pray that she would soon know him.
और मैंने ये दुआ की कि वो जल्द यीशु मसीह को जानने वाली बन जाए.
And then I was inside the airport and my phone went 30 seconds later went ping. She had sent me her address so I could mail the book to her.
और जब मैं एयरपोर्ट के अंदर चला गया तो 30 सेकंड बाद मेरा फोन बजना शुरू हो गया और मैंने जवाब दिया और उसने कहा कि मैंने तुमको अपना एड्रेस भेजा है, इसलिए वो किताब तुमने मुझे भेजनी है ताकि मैं उसे पढ़ सकूं.
So she has this book.
उसके पास ये किताब मौजूद है.
And after she had the book a while, I said, "Let's meet." She said, "Yeah, let's meet." So we had breakfast together in a restaurant.
और किताब देने के बाद मैंने उसे कहा कि कहीं पर मिलते हैं तो हम एक रेस्टोरेंट पर इकट्ठे हुए सुबह के नाश्ते के लिए.
And she worked real hard to try to convert me to the religion of Pakistan.
उसने अपने मज़हब में मुझे तब्दील करने की बड़ी कोशिश की.
And I kept telling her stories of how great Jesus is.
और मैं उसे मुसलसल तौर पर कहता रहा कि यीशु कितना अजीम है, यीशु कितना भला है.
And then we met again and I gave her a Bible with her name inscribed on the cover.
और मैं दोबारा उससे फिर मिला और मैंने उसके लिए एक बाइबल ली और उस बाइबल के कवर के ऊपर उसके नाम को क्या कर दिया जी, stamp lagwa di written karwa diya.
And I put a bookmark at Luke chapter 1.
Aur maine ek bookmark rakh diya Luke ki injeel ke hisse mein.
So I want you to start reading here. You know, you've heard about Christmas, you're going to read the Christmas story for the first time in your life.
Aur maine usse kaha ki tumne Christmas ke bare mein suna hua hai, isliye tum pehli dafa Christmas ki kahani ko padhogi to yahan se padhna.
And as soon as I get off the plane next week, I'm going to send her a text and say, it's time for us to meet for the third time.
और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर दोबारा वापस उतरा और मैंने उसे कहा कि ये तीसरी दफा होगा जो हम मुलाकात करेंगे और मैंने उसे टेक्स्ट मैसेज भेजा.
Some people come quickly and easily and some take a long time.
कुछ लोग मसीह के पास आते हैं आसानी से बड़ी जल्दी से लेकिन कुछ बहुत वक्त लेते हैं.
But my wife became a Christian believer, her dad was very angry.
जब मेरी बीवी मसीह की पैरोकार बनी तो उसका बाप बड़ा ही नाराज था.
We prayed for him for 30 years before he said yes to Jesus.
अपने ससुर के लिए मैंने और मेरी बीवी ने 30 साल तक दुआ की और 30 साल बाद उसने यीशु को कबूल किया.
So when I go back to America, I'm going to be a missionary to Pakistan by meeting again with a lady named Gul, G-U-L. Is that a Pakistani name?
G-U-L? Gil. Probably Gil. G-U-L, Gul, somebody. जब मैं वापस जाऊंगा तो मैंने मुलाकात करनी है एक औरत से जिसके नाम की स्पेलिंग G-U-L है. वो उसके साथ मेरी मुलाकात हुई, पाकिस्तानी है.
Okay, now who invites... The spirit and the bride say come. The spirit says come, the bride says come. But they're really good work. It's when we're working with the spirit. And what we're saying come, the spirit is saying come at the same time.
जब रूह और दुल्हन कहती है और रूह और दुल्हन मुत्तफिक होकर हम उसके साथ रूह के साथ कहते हैं आ, तो फिर सही हकीकत में काम होता है क्योंकि रूह दावत दे रहा है.
And the best thing happens when we live as that cleaned up, dressed up, walking wisely bride of Ephesians 5.
लेकिन सबसे उम्दा बात कब होती है जब हम अपनी जिंदगी बसर करते हैं खुदावंद की रास्तबाजी में उस पोशाक में उस बुलाहे के मुताबिक जो इफिसियों 5 बाब में हमको दिया गया है.
I know it's this way in the Czech Republic. And I think it must be similar here.
Czech Republic में भी इस तरह से है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर भी ऐसे ही होगा.
Czech atheists study me and other Christians far more than they study God.
Czech Republic के जो atheist हैं, atheist से मुराद यानी कि जो खुदा के इनकारी हैं, वो मसीहियों का बहुत ज्यादा मतालिया करते हैं.
We are the living epistles that God delivers to others.
हम खुदावंद यीशु मसीह का वो जिंदा खत हैं जो लिखे गए हैं.
I know that 100% of our Czech converts from atheism had to first believe that their Christian friend was real and not fake.
चेक रिपब्लिक का जो एथियस्ट है जब वो मसीह का पैरोकार बना होगा तो सबसे पहले उसने मसीही को जिससे मुलाकात होगी उसे उसने जांचा होगा परखा होगा. जब इस नतीजे पर पहुंचा कि ये वाक्य ही हकीकी और सच्चा है तब उसने अपना अकीदा बदला होगा.
If they find me lying or having an affair or cheating at school or doing anything I obviously ought not to do, I have just completely lost that person from ever following Christ.
अगर मैंने उनके सामने झूठ फरेब या वो ही काम जो करना ना मुनासिब है किए होंगे तो मैंने उस बंदे को क्या है जी निजात तक लाने के लिए खो दिया है.
Okay, I think it's time for me to find a way to put a period and to finish this.
इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे पीरियड यानी कि वो स्टॉप ब्रेकर लगाना होगा ताकि पैगाम को खत्म किया जाए.
The invitation is so beautiful. It's If you're thirsty, come drink of the water of life freely. That's the invitation the bride gives.
और रूह जो दावत देती है वो क्या है? रूह और दुल्हन कहता है, आओ जो प्यासे हैं, पिए और मुफ्त हासिल करें.
When I had cancer, I was offered chemo medicine, and I had to take it or die.
जब मुझे कैंसर था तो मैं उस कीमो में से गुजर रहा था तो सोच रहा था कि बस लाइफ खत्म हो जाएगी, मेरा इंतकाल हो जाएगा.
I do believe that God used the chemo medicine to heal me.
मैं यकीन करता हूं कि खुदा ने कीमो मेडिसिन को इस्तेमाल किया कि मुझे शिफा दे.
What surprised the medical team was that it happened so quickly. They had never seen it work that fast before.
लेकिन डॉक्टर हैरान थे कि जो शिफा का काम जारी हुआ वो बड़ा ही तेज और बड़ा ही फास्ट था जो पहले कभी नहीं हुआ.
My options were to take chemo or die, and for unbelievers is to take Jesus or perish.
मेरी जो ऑप्शन थी वो क्या थी? या तो कीमो करो या मर जाओ. या ईमानदार के लिए क्या था? यीशु से मिलना. और गैर ईमानदार के लिए क्या है जी? दोजख में जाने वाली बात थी.
And the invitation is take the water of life freely.
और दावतनामा क्या है? रूह के उस पानी को मुफ्त पिए.
If you have a lot of money, wow, you can stay in the best hotels. You can fly first class on airplanes. You can have a really nice car.
अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, आप अच्छे से अच्छे होटल में रह सकते हैं, फर्स्ट क्लास में फ्लाई कर सकते हैं, बहुत सी अच्छी गाड़ियां खरीद सकते हैं.
But you only get to heaven with your pockets empty and feeling absolutely broke.
और अगर आसमान पर पहुंचे और वहां पर आपके पास कुछ भी ना हो.
Blessed are the poor in spirit in the Sermon on the Mount.
और पहाड़ी वाज में कहा गया है, मुबारक हैं वो जो रूह के भूखे और प्यासे हैं. दूसरे लफ्जों में रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं.
We don't come offering Jesus anything that we've done or accomplished. We come desperately poor and say, Lord, I'll take that free gift that you've offered me.
हम यीशु को कुछ भी नहीं दे सकते. अगर कुछ दे सकते हैं तो वो क्या है? तवज्जो के खुदावन, जो कुछ तूने किया है मैं इस मुफ्त तोहफे को लेता हूं और इसे कबूल करता हूं.
Everyone here is either invited to become the part of the bride or we're asked to be the bride inviting others.
आज जितने यहां पर बैठे हैं, या तो आप दावत देने के लिए बुलाए गए हैं या आप वो दुल्हन है कि दूसरों को दावत दें कि आपके साथ मसीह की दुल्हन बने.
So read that part of Ephesians 5 and say, Lord, let people see, let other people see Christ living in me. Make me attractive to others.
इफिसियों 5 को पढ़ें और खुदा से कहें कि खुदावन लोग देखें मुझ में और इस बात का इश्तियाक रखें कि हमने इस जैसा बनना या बननी है जब वो हमें इफिसियों 5 बात को देखेंगे.
Lord, bring hungry, thirsty, dying people to me and guide the conversation so that I speak for you.
आपकी दुआ होनी चाहिए खुदावन भूसे भूखे प्यासे और खोए हुओं को हमारे पास लेकर आ ताकि हम गुफ्तगू शुरू करें और मसीह का दावतनामा देने वाले बने.
Just one little last thought.
एक आखिरी ख्याल शेयर करना चाहता हूं.
My mother taught me how to be a soul winner.
मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि रूहों को किस तरह जीतना है.
She taught me how to watch for Jesus to show up in my life.
उसने मुझे सिखाया कि जागते रहना है जब यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी में आए.
I don't know if you can imagine this kind of old-fashioned American street, but there were houses one after another, and we all had places up front where we could sit.
मुझे नहीं पता कि आप इसका तस्वीर कर सकते हैं कि पुराना अमेरिका जिसमें क्या है जी, आमने सामने घर हैं और दरमियान में से सड़क गुजर रही है.
And we would visit each other in front of our houses, and my mother always had a story. She said, "Oh, I got to tell you something really exciting from today."
और हम एक दूसरे के पड़ोस में जाते और एक दूसरे के साथ मिलते, गुफ्तगू करते, टाइम गुजारते, और मेरी माँ आकर अक्सर मुझे कहती, "मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ कि आज क्या हुआ?"
Sometimes early on, I was a little bit embarrassed because I knew what was coming.
और कभी कभी तो मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता था, मुझे पता था कि क्या अब मेरी माँ बात करेगी।
And then later on, I began to respect it and think how cool my mom is.
और फिर बाद में मैंने सोचा और इस बात का मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ क्या है जी, बड़ी ही बेहतरीन है।
And she often had funny stories.
और उसके पास बहुत सी मजाकिया स्टोरी होती थी।
But they always ended up with wow.
और सब की सब जो उनका अंत होता था उसमें क्या होता थे, वाह जी वाह।
Jesus was so good to me. He sure helped me today. I just don't know how I would have gone through that without him.
और वो अक्सर यही कहती थी, यीशु मेरे साथ बहुत भला था आज। आज उसके बगैर मैं सारे दिन को गुजार नहीं सकती थी।
Okay, walk wisely. Know that you're the bride of Christ. Ephesians 5 is 100% about how we live our lives on this earth. It's 100%. About our relationship with Jesus in heaven.
इसलिए कहना चाहता हूँ, एफसीओं 5 बाब में लिखा है, तनावों की मानत चले, क्योंकि 5 बाब हम सबको सिखाता है कि हमने इस जमीन पर किस तरह जिंदगी बसर करनी है, तनावों की मानत ना के नादानों की मानत।
It sets the expectations.
और ये है क्या है जी, तवक्को है खुदा की।
It's full of application.
और इसमें क्या है जी, भरपूर तरीके से अतलाक पाया जाता है। और आखिरी पेज बाइबल का क्या कहता है, वाज़ह तौर पर प्रोक्लेमेशन यानी के ऐलान करता है, इश्तहार देता है।
खुदावंद
आप सबको बरकत दे, जोरदार तालियां। आपको बताना चाहता हूं, हमने कोई नोट्स कंपेयर नहीं किए। मैंने अपने पैगाम को कहां से खत्म किया था जी, पहली शादी कहां पर हुई जी, बागे अदन में, और आखिरी शादी कहां पर हुई जी, मकाशवा की किताब में। हमने कोई नोट्स शेयर नहीं किए, लेकिन खुदा के रूह ने क्या किया जी, सारा कुछ कसरत से क्या किया है जी, इस्तेमाल किया है। सारा जलाल यीशु के नाम को मिले। I was just telling them we did not share our notes with one another. It was totally the spirit of God. My ending point was the first wedding took place in the garden. The second wedding took place in the book of Revelation. Praise God. Hallelujah. Agli break kiya ji. Theek ho gaya ji. Main jana ke hun asina एक ब्रेक कर लिए 10-15 मिनट दी, बाथरूम दस्तियाब आ, वापस आ जाओ। तो अफसोस आ भाइयो, जिहड़े तुसीं अपना कहिंदे कि ज़बूर दे तारफ दे विच शामिल नहीं हो सके, लेकिन नोट्स दस्तियाब आ, वीडियो भी दस्तियाब होगी, ऑडियो मैसेज भी दस्तियाब होंगे। वह बंद कर दिओ जी। तो इस करके मैं चाह रहा कि अगले हिस्से च लाजमी खाना खा